ध्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु वन्थाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरक्षिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलस्य चित्तस्य कामादितरङ्गमस्य कृतामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे मस्ते शरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृष्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिहाय पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुङ्गानकृष्णम्। तवैवास्मि तवैवास्मि यद्वामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे सम्य मां शरणमपि ते। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया था और पिता के आदेश को पालन करने के लिए रामचंद्र जी दंडकारण्य में पहुंच गए। उस समय में रावण मृगा का रूप धारण कर सीता को हर ले गया, धारण करा करके मारी थे, और रामचंद्र जी लक्ष्मण को भाग देकर के जब चले गए मृगा के पीछे, रावण ने कपटतापूर्वक साधु संन्यासी का वेश धारण कर और उनको हरण करके ले गया। ये लोग लौटे सीता जी को नहीं दे सकते, राम विफल हो गए और फूट फूट करके रोने लगे। प्रेम में ऐसे विवश हो गए, विरह में पैरों से भी पूछने लगे, गोदावरी नदी से पूछने लगे कि मेरी प्यारी सीता जी कहाँ गई। लक्ष्मण जी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो भी सांत्वना इत्यादि नहीं दे पा रहा है। और उसी समय में कैलाश में शंकर जी को इच्छा हुई कि भगवान का हम दर्शन करें, और वो जब आए तो सती जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी, उनके साथ में वो भी आए। दोनों दंडकारण्य में राम को विलाप करते हुए सीता के विरह में तड़पते हुए देखा। शंकर जी ने उनकी लीला में कोई बाधा न देकर उनको साष्टांग प्रणाम किया दूर से छिप कर, और छिप कर प्रणाम करने के बाद में उनकी बहुत दूर से परिक्रमा की, और परिक्रमा करके फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मन ही मन में सौस्तुति की और फिर लौटने लगे। उनकी कहीं लीला में कोई बाधा न हो जाए। इतने में सती जी ने पूछा, प्रियतम ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने कि हमारे आराध्य राम हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। तो हमने तो सुना है, सती जी ने कहा, एक निराकार निर्गुण परब्रह्म अव्यक्त अनादि असत के हृदय में व्याप्त रहने वाले श्री राम हैं। वो जगत के आराध्य हमने सुना है, और इनको मैं देख रहा हूँ कि महाराज दशरथ अयोध्या के जो राजा हैं उनके ये लड़के हैं, और यहाँ पर इनकी पत्नी की चोरी हो गई है, और ये समझ नहीं रहे हैं कि हमारी पत्नी को कौन ले गया, ये भी नहीं जानते हैं, और बिलख बिलख करके रो रहे हैं, इनको तनिक ज्ञान नहीं है। एक स्त्री के मुंह में सुना रहो ना, ये कौन है मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, शंकर जी ने, प्रिय देखो हमने ठीक ही कहा है, ये हमारे आराध्य हैं, यही सगुण निर्गुण सबके आधार, यही समस्त विश्व का सृजन सृष्टि संहार करने वाले, यही सर्वस्व हैं, हमारे आराध्य हैं, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। तुमको यदि कुछ संदेह हो तो इनकी परीक्षा कर लो। सती जी ने देखा जिसे अब परीक्षा कर नहीं लेनी अच्छी है, इसलिए कैसे परीक्षा करेगी। शंकर जी आगे चल पड़े और एक वटवृक्ष की छैया में वहीं पर बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे, और ये वहीं पर कुछ ठहर गई और ठहर करके देखा कि इनकी परीक्षा कैसे है। जब मैं सीता जी का रूप बना लूं और जब ये सीता जी का रूप देखेंगे तो दौड़ करके हमारे पास में आएंगे और हम गले से मिल जाएंगे और बड़े खुशी हो जाएंगे, तब समझेंगे जे ये दशरथ के पुत्र साधारण एक मानव है, ब्रह्म नहीं है। और यदि ये मुझे पहचान गए, किसी तरह से जान गए, तब तो मैं सोचूं यही पर ब्रह्म है, शंकर जी के उपास्य और विश्व ब्रह्मांड के उपास्य हैं। सती जी को ये भाव था, ब्रह्म निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, वो निर्गुण है, उनमें कोई शक्ति नहीं होती, वो अव्यक्त हैं, अनादि हैं, उनकी धारणा है। यदि उनका रूप होगा तो सब जगत में व्याप्त कैसे, सब जगत सबके अंतर्ज्ञानी कैसे होंगे, और जब उनका रूप कोई होगा तो उनका जन्म मरण भी जरूर होगा, जो कोई शरीर धारण करता है वह जन्मता मरता है, वो विशेष सृष्टि का कारण कैसे बन सकता है और सबके हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है, उनके समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोच करके उन्होंने सीता जी जैसा ठीक सीता का अविकल रूप बना लिया, और बना करके पासही की एक झाड़ी के पास में खड़ी हो गई। राम प्रत्येक पेड़ों से पूछ रहे थे, हमारी प्रिया जी को देखा, हमारी प्रिया जी को देखा, और वो ठीक सामने आकर के खड़ी हो जाती, किंतु राम उनको नहीं देखते, क्या जैसे ये हमको देखा नहीं इसने, इसलिए हमसे पूछा नहीं या हमको पकड़ नहीं लिया, इसलिए वो फिर पीछे से जिधर हम जाते थे फिर उधर से आकर के उनके सामने खड़ी हो जाती। तीन चार बार ऐसा किया तब राम को दया आ गई, इस पर दया करनी चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा, माता जी आप यहां पर कैसे खड़ी हैं, अकेले खड़ी हैं। शंकर जी भोलेनाथ कहाँ गए, वो किधर गए, आपको अकेले यहां देख रही हूं, देख रहा हूं। झटिए समझ, अरे ये कैसे जान गया, ये जान कैसे गया, तो यही परब्रह्म है, उनका मोह दूर हो गया, उनके चरण में गिर गई, जब चरण में गिरी तो उन्होंने देखा क्या, राम सीता लक्ष्मण तीनों बड़े प्रसन्न चित्त से वहां पर खड़े हैं, जिधर दृष्टि जाए इधर देखा तो उधर ही तीनों हैं, इधर देखा तो उधर ही, सारा विश्व में जहां जहां उनकी नजर गई देखा राम और सीता कहीं अलग नहीं है, दोनों हैं। देख करके वो झट अब एकदम गिर गई, गिर करके प्रणाम करके जब उठी तो देखा क्या, राम और लक्ष्मण केवल हैं और राम बिलाप कर रहे हैं, हाथी से तू कहां गए, और इनको भूल गए और दूसरी ओर जाकर के पूछने लगे। सती जी को बड़ा ग्लानि हुई, मैंने अपने गुरु और पति शंकर की बात नहीं मानी, उन पर विश्वास नहीं किया, तो मेरा अधोपतन निश्चित है। जो लोग गुरु के बात पर, यदि गुरु ऐसा सच्चा गुरु हो, सदगुरु हो, शास्त्रों का जानने वाला, भजन परायण, भगवान की उपलब्धि करने वाला ऐसा यदि गुरु हो और गुरु पर कोई विश्वास न करे, बात न माने, तो उसका अधोपतन निश्चित। इसलिए बड़ी डर गई। डरने के बाद में देखा जी हमारी धारणा तो गलत है, अरे इनका तो परब्रह्म का रूप है और सीता जी से इनका भी योग नहीं है, ये तो मालूम होता है लीला कर रहे हैं। मोह दूर हो गया, डरती हुई, सुखचाती हुई धीरे 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 शंकर की तरफ में चले। शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले आपने अब इधर पे प्रिया नहीं कहा। उन्होंने कहा आपने परीक्षा कर ली, हे नाथ में क्या परीक्षा करूंगी, मैं क्या परीक्षा करूंगी, वो पर ब्रह्म है, आपकी बात भूसी नहीं है, आपने कोई परीक्षा ली, मैं उनके क्या परीक्षा लूंगी। अब गुरु जी से झूठ भी बोला पति से, मैं उनकी क्या परीक्षा लेती, मैंने परीक्षा नहीं ली। अच्छा ये छिपा भी रही हैं हमसे। उन्होंने मन ही मन में संकल्प किया, देखो इन्होंने हमारी आराध्या देवी सीता का रूप बनाकर और परीक्षा ली हमारे लिए, ये मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं कि नहीं हूं, मैं समस्त लोगों के हृदय में रमण करता हूं कि नहीं, सर्वव्यापक हूं कि नहीं और सर्वज्ञ हूं कि नहीं। इसलिए सीता जी हमारी मैया हैं, आदि जननी हैं, जगत की जननी हैं। इसे जब वो रूप बनाया तब तो ये मेरी माता मैया हो गई, अब उनको पत्नी के रूप में मुझे अंगीकार नहीं करना है, मैया के रूप में हम उनको अंगीकार करने पाए, आज से मेरी ये माँ हो गई। आ रहा है समझ में, स्त्री होने पर भी जो सीता जी का रूप बनाया है, इसलिए मैं अब इनको मैया के रूप में ग्रहण करूंगा, आप अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। जब उन्होंने संकल्प किया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, आपके अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद में आश्रम में लौटे, आज आसन उनको दिया सामने, पहले आसन देते थे बाईं तरफ, आज सामने आसन दिया, जैसे मैया को आसन देते हैं, इसलिए अब सती जी से रहा नहीं गया, अजय इन्होंने हमको प्रत्याग कर दिया और मैया के रूप में ग्रहण किया और पत्नी के रूप में, सेविका के रूप में अब ग्रहण नहीं करेंगे हमको। क्यों, दो तीन बातें इसमें ये शिक्षा देनी थी कि भगवान का रूप है, उनमें विश्व के जितने निर्मल गुण हैं, अप्राकृत गुण हैं, दया है, माधुर्य है, सर्वज्ञता है, सब प्रकार के ज्ञान है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य है, षड़ैश्वर्य परिपूर्ण ये भगवान है, ऐश्वर्य जस्य ज्ञान वैराग्य ना भवे, इसलिए ये भगवान है। तो ये लोगों की ये धारणा, फिर क्या हुआ अंत में, क्या हुआ, सीता जी ने कहा, सती जी ने सोचा, अब जब माता के रूप में इस शरीर को ग्रहण कर रहे हैं, पति पत्नी के रूप में नहीं, अब इस शरीर को रखना नहीं, इसलिए उन्होंने कहा अब शरीर नहीं रखना। तो उन्होंने क्या बहाना बनाया, उसी समय उनके पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे और सब लोगों को निमंत्रण किया, शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि उनसे वो शत्रुता समझता था, शंकर जी के तत्व को नहीं समझता था, इसलिए नहीं बुलाया। और सती जी को भी, अपनी बेटी को जो सबसे छोटी प्यारी बेटी थी, उसको भी नहीं बुलाया। और सब लोग जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे उसके यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ, दक्ष प्रजापति का उस समय स्थान अभी जो हरिद्वार है वो हरिद्वार में था, वहीं पर यज्ञ किया था। सती जी ने देखा कि सभी लोग जा रहे हैं और मैं अपनी मैया के घर में, पिता के घर में नहीं जाऊंगी, तो मुझे भी चलना चाहिए। देखा कि हमारी जितनी बहनें हैं सब बहनें जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगी, रहा नहीं गया। शंकर जी से बोली, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं पिताजी के पास में जाऊं, मैया से भेंट करके उस यज्ञ में भाग लूंगी। उन्होंने कहा कि देखो एक बात है, बिना आदर के कहीं नहीं जाना चाहिए। वो हमसे शत्रुता करता है, इसी नाते तुमसे भी अब शत्रुता करता है, तुमको वह प्यार नहीं करेगा, विरोधाचरण करेगा। गुरु के यहां बिना बुलाए जाओ, माता पिता के पास में बिना बुलाए जाओ, बात तो ठीक है, किंतु यदि देखो जैसे वो विरोधी है तो मत जाओ मैया के पास। गुरु तो कभी विरोधी हो ही नहीं सकता, कभी संभव पर नहीं, किंतु माता पिता विरोधी हो सकते हैं, बिना बुलाए मत जा। अब तो और बिगड़ गई, पैरों से पृथ्वी को परपीटने लगी और रोने लगी, छटपटाने लगी और जाने के लिए प्रस्तुत हो, अकेले ही चल दिया। शंकर जी ने पीछे से अपने गणों को और नंदी को भी उनके साथ में भेज दिया। जब वहां पर पहुंची तो पिता ने आज बोल चाल भी नहीं की, कुछ पूछा नहीं। उनकी बहनें भी डर से, पिताजी के डर से नहीं बोली, सम्मान नहीं किया। केवल मैया थोड़ी देर के लिए दो बात, एक बात की, और किसी ने नहीं किया। जब ये शाला में गई, देखा जिन सब देवताओं को आदर करके भाग लिया गया है, उनके पति को नहीं, और वहां पर उनकी निंदा हो रही है। उन्होंने योग अभ्यास से अपने शरीर से ही बैठ करके अग्नि उत्पन्न की और उसी में जल करके खाक हो गई। क्यों? पिता का अपमान बहाना है मैया का, गुरु की बात नहीं मानने वाले की कुछ ऐसे ही दुर्गति होती है। शंकर की बात उन्होंने नहीं मानी, अविश्वास किया, एक तो बात ये, और उनके बिना कहे हुए वहां पर गई। इसलिए अब नया शरीर धारण करके शंकर जी की आराधना करके उनसे शादी करूंगी, इसलिए अब यह शरीर से संभव पर नहीं है। अंत में ऐसा ही हुआ, हिमाचल के घर में उन्होंने जन्म लिया और फिर शंकर जी से उनकी शादी हुई। ये सब रामायण में, तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण और सर्वत्र इसका वर्णन। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत से लोगों की धारणा है, कुछ लोगों हमसे प्रश्न भी पूछा है कि भगवान का स्वरूप नहीं, आकार नहीं, वो तो निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है। जब जगत में उनकी कृपा होती है तो कोई मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं। जब जरूरत होती है तो मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, इसमें आते हैं, इसलिए उनका असल में कोई रूप नहीं। यह बात संपूर्ण गलत है। तुलसीदास जी का, व्यास जी का, भगवान का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराण में, रामायण में कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो ऐसा कहते हैं, संपूर्ण गलत कहते हैं। अवतार माने क्या? ये मैं इसलिए बतला रहा हूं कि ये निष्ठा आपकी ठीक रहेगी तो भजन कर सकेंगे, नहीं तो भजन नहीं करेंगे, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान को, वैष्णव लोगों को भी ऐसा सुना है कहते हुए, किंतु यह गलत धारणा है। वेदों में, उपनिषदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। हम इसके लिए कुछ युक्तियां दे रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण दे करके आपको पुष्ट करके फिर हम आगे अपने विषय में आएंगे, क्योंकि यह विषय भी बहुत जरूरी है। उतरना, अवतार माने जैसे हैं वैसे ही उतरने का नाम अवतार है। ऐसा नहीं कि उनका रूप नहीं आया, पीछे से उन्होंने रूप लिया और फिर भगवान अपने शरीर को छोड़ दिया और निराकार बन गया, ऐसा नहीं। जिस शरीर से नित्य विराजमान रहते हैं सच्चिदानंद भगवान हैं, गोलोक वैकुंठ में या अयोध्या में उनका वह रूप नित्य है, वहां पर नित्य लीलाएं होती हैं, जब जगत पर कृपा करनी होती है उसी रूप को लेकर के उतरते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका अवतार था ही नहीं, उनका रूप ही नहीं था, यह गलत धारणा है। क्यों? अब थोड़ा सा हम शास्त्रों का विचार लेकर के चलते हैं, इसमें उपनिषद का विचार लेंगे, वेदांत शास्त्र का विचार लेंगे, भागवत का, रामायण सबका। आपने पहले रामायण से इसी दिखलाने के लिए इस कथा को मैंने कहा, यह तुलसीकृत रामायण वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र है ने? उनका भ्रम दूर हो गया किनका? उन्होंने देखा जी उसी रूप को लेकर के वो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, उसी रूप लेकर के आते हैं। शरीर नहीं छोड़ते भगवान, भगवान नहीं मरते कभी, कभी जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी। भय प्रकट, जन्म नहीं लिया भगवान, क्या हुआ? प्रकट हुए, पहले उनको दिख नहीं रहे थे, अब यहां पर प्रकट हो गए। जैसे आग सर्वत्र है, हमारे शरीर में भी आग है, यहां भी आग है, वहां भी आग है, सर्वत्र। मैचिस में भी आग है, मैचिस का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसमें ऐसे लगाइए, आग निकल आएगी। वो प्रकट हुई, जन्म नहीं लिया, पहले नहीं आग ही नहीं थी और वहां आग हो गई, ऐसा नहीं। एक पत्थर के ऊपर में एक पत्थर का टुकड़ा जोर से मारिए, देखिए उसमें आग निकल आएगी। हमारे शरीर में भी आग है, सर्वत्र आग है, देख नहीं रही। वैसे भगवान का वस्त्र चिदानंदमय रूप इन जड़ नेत्रों से नहीं दिखता, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। जतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अविशं विशन्ति तद्विजिज्ञासु तद् ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं? जिससे समस्त प्राणी, समस्त सारा विश्व निकला है, जो समस्त जगत का पालन पोषण करते हैं और अंत जगत उस जिसमें समा जाता है उसको ब्रह्म कहते हैं। अब जिससे जगत पैदा हुआ उसका रूप है कि नहीं, ये थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसे आम के पेड़ में फल लगा, उसमें गुठली होती है, गुठली को किसी एक जगह में लगा दो और पानी दो, क्या होगा? अंकुर होकर के उसे जो पेड़ होगा, अब उस पेड़ में कैसा आम होगा? जैसा बीज है वैसा ही होगा ना? जिस चीज से जगत की निर्माण हुआ है उस चीज में रूप है कि नहीं? यदि उसमें रूप नहीं है तो ये रूप कहां से आ गया? अरे बाप का रूप ही नहीं है तो बेटा का रूप कहां से आ गया? ये तो विचार करो। यदि ईसा मसीह पुत्र हैं किसके? गॉड के, तो गॉड का रूप नहीं होगा? अरे बाप का ही रूप नहीं रहा तो उसका बेटा का कैसे रूप है? मैया बाप का रूप नहीं रहा, फ्रॉम नथिंग कुछ नहीं निकलता, देर मस्ट बी समथिंग एंड गॉड इज होल थिंग। पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव पूर्णमेव। भगवान परिपूर्ण है, अखंड वस्तु पूर्ण है, उनसे भगवान के लाखों रूप अवतार निकलते हैं। जो निकलते हैं वो भी पूर्ण, और जो जिससे निकला वो भी पूर्ण। भगवान कभी भी अपूर्ण, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हरा समझ में? यदि कोई पूर्ण चीज है, पूर्ण में से कुछ भी ले लो, पूर्ण भी ले लो, तो वो पूर्ण ही रहेगा। जो चीज जीरो है उसमें कोशिश चीज को लेने का कोई बात ही नहीं, कैसे लेंगे? इसलिए फ्रॉम एनीथिंग एवरीथिंग कनेक्ट बी क्रिएटेड। जो शून्य खुद ही है, जिसमें शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, जिसमें खुद रूप नहीं है, जिसमें रोग की कोई पोटेंसी नहीं है, उससे ये इतना लाखों रूप वाला विश्व कैसे पैदा हो जाएगा? असंभव होगा। इसलिए वो वस्तु पूर्ण होनी चाहिए। जो कुछ है ही नहीं उससे क्या निकलेगा? ये जीरो, इससे कोई चीज निकल जाए तो नहीं निकलेगी, जीरो से। इसलिए भगवान में संपूर्ण रूप है, मनुष्य ही रूप ऐसा है, इतना सुंदर रूप कि उसे कोई भी रूप निकल सकता है। डार्विन की यह थ्योरी कि पहले बंदर था, बंदर से मनुष्य हुआ, ये संपूर्ण रूप से भ्रामक है। अरे हमारे यहाँ तो देखने में सक्षाती रूपे मनु और सतरूपा पहले मनुष्य थे, उसके ही सारे ये सब विश्व में ये सब फैले हुए हैं, उन्हीं की संतान है सब से लेकर के मनुष्य तक। इसलिए गलत थ्योरी है। तो आज यदि बंदर से मनुष्य हो जाता है तो मनुष्य से फिर कोई नई चीज क्यों नहीं पैदा हो जाती लाखों करोड़ों की वर्षों में? डार्विन तो मर गए, किंतु डार्विन के चेले अभी भी बहुत से लोग हैं, इसलिए थोड़ी संपूर्ण से भ्रामक है, बंदर से मनुष्य नहीं हुआ। ये दुनिया सब एक साथ में भगवान ने निकाली ब्रह्म के द्वारा। लोग कहते हैं ये भारतवर्ष में ये लोग आज जो लोग बाहर से आए ये संपूर्ण से भ्रामक, ये पश्चात के लोगों की देन है भारत को सर्वदा गुलाम बनाने के लिए। ये ऐसी सी बात है, आज भूमि वही है, भारत है, यहीं पर मनुष्य सतरूपा मनु ब्रह्मा इत्यादि सब यहीं से पैदा हुए। इसलिए भगवान निराकार है ये बात संपूर्ण रूप से गलत है। देखिए एक चीज, हमारे अंग्रेज लोग भी, अंग्रेज में नहीं चाही लोग, भगवान का रूप नहीं मानते, चर्च में उसका कोई मूर्ति नहीं रखते, किंतु बाइबिल में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। माने क्या होगा? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने अपने रूप के समान में मनुष्य को बनाया, तो भगवान का गॉड का रूप होना चाहिए ना मनुष्य के समान। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में लिखा है सदैव सम्य इदम अग्र आसीत, भगवान का रूप ही आदि रूप है मनुष्य रूप, वही कृष्ण का रूप है, राम का रूप है, उनसे ही ये सब निकले हैं, वही मनुष्य नहीं सारा विश्व निकला है उससे। इसलिए भगवान का रूप है। दूसरी बात, तब उनको निराकार क्यों कहा गया? शास्त्रों में तो निराकार लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि भगवान का यह रूप है ये जागतिक हाड़ मांस श्याम का रूप नहीं है, ये सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूप घन रघुराया, या क्या लिखा है, राम का रूप कैसा है? सच्चिदानंद, प्राकृत नेत्र से देखा नहीं जा सकता। एक उदाहरण के लिए ले लो, पानी, पानी का रूप क्या है? पानी को कटोरी में रखो तो कटोरी का रूप हो जाएगा, ग्लास में रखो तो ग्लास में, थाली में थाली में, समुद्र में तो समुद्र का आकार, जहां भी जिस रूप में रखो उसी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग इसको डिफाइन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने देखा कि वाटर इज सेपरेट, क्योंकि उसके कौन से रूप को कहेंगे, वो तो जिस चीज में रहेगा वैसा ही रूप धारण कर लेगा। दूसरी बात, पानी का टेस्ट कैसा है? पानी का टेस्ट होता है, किंतु जहां की भूमि जैसी होती है उस भूमि के स्वीटनेस को, खारापन को, या मिठापन को, या जैसा वहां की मिट्टी होगी उसी में उसका टेस्ट लग करके कुछ वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए ये लोग कहते हैं डिफाइन नहीं कर सकते, पानी के रूप को नहीं डिफाइन करते, पानी को आंख से देखते हैं कि नहीं देखते? जब देखते हैं तो रूप नहीं है तो ऐसे ही देख लिया। जब हवा लगती है शरीर में तो कोई चीज है कि नहीं है? जरूर है, किंतु साइंटिस्ट कैनॉट डिफाइन इट, सो दे हैव कॉल्ड इट वाटर। वाटर इज सेपरेट, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज टेस्टलेस, किंतु ये सब है वह पानी में। एक साधारण जगत के रूप चीज को पानी का ही ये डिफाइन नहीं कर सकते रूप गुण क्रिया, तो भगवान का रूप है, भगवान जैसा रूप चाहेगा वैसा धारण कर सकता है, उसमें सब रूपों की पटंती है, उसमें समस्त स्वाद है, उसमें समस्त गुण है, किंतु यू कैन नॉट डिफाइन। इसलिए हमारे ऋषि मोती लोग अवांग मन तो भगवान के रूप को, गुण को, लीला को समझ नहीं सके, इसलिए उन्होंने कह दिया क्या, भगवान निराकार, क्योंकि इस प्रकार से हम देखते हैं मुसलमान भाई लोग हमारे भी नहीं मानते उनका रूप। किंतु कुरान ने भी लिखा है ऐसा, इन्ना लहा खलाका मिन सूरत ही, सूरत मैंने क्या है रूप, खुदा तल्ला का बहुत ही सुंदर रूप है। यदि सुंदर रूप नहीं होता, विचार नहीं होता, तो मरने के बाद में किसी समय में सबका लेकर के विचार करते हैं, वो विचार कैसे करते, कैसे विचार करेंगे, उनको पाप पुण्य का फल कैसे देंगे। इसलिए कुरान भी ये कहता है कि भगवान का रूप है। यदि नहीं होता तो आकाश में ही क्यों नहीं पूजा करते, चर्च बनाने की, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी। इसलिए किसी न किसी रूप में जगत का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान का किसी न किसी रूप में रूप मानता है। हमारा सनातन धर्म भगवान का सब समय रूप मानता है, उनका रूप ही सनातन है, नित्य है, उसी को गोलोक वैकुंठ से जगत के कल्याण के लिए लिए नीचे उतरते हैं। हमारे जयपुर में गोविंद जी का विग्रह है, वो चलते थे, बोलते हैं, कहते हैं कि हमको ये चीज मीठी प्यारी है, हमारे नाक में ये पहना दो, नथ पहना दो। हमारे साक्षी गोपाल अभी आजकल हैं साक्षी में, पुरी के पास में, जगन्नाथपुरी, साक्षी देने के लिए अपने पैरों से चल करके हजारों मल वृंदावन से चले गए वहां दक्षिण भारत में, और साक्षी दी। इसकी बहुत कहानी लंबी है, यदि न रहते तो गोवर्धन गिरिराज तो पत्थर है, उनकी परिक्रमा लाखों करोड़ों लोग और चित्रकूट की लाखों लोग परिक्रमा किस लिए करते हैं, जो ही मनोती करते हैं वही पूरा हो जाता है। ऐसे ही नहीं, अंधविश्वास नहीं है, इसलिए इस याद को ठीक से रखिए, ये भगवान का रूप है और उनका रूप कभी जन्मता मरता नहीं है। उसी रूप को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर उसी रूप में जब जरूरत होते पधारते हैं। राम के लाखों अवतार हुए किंतु सभी एक ही समान रूप, कोई अंतर नहीं हुआ, और कृष्ण के भी लाखों करोड़ों बार आविर्भाव हुआ है, अवतार लिए हैं, आए हैं, किंतु सब समय वही मुरली मोहन बात बंसी, मोर मुखो पीताम्बर धारण किए हुए, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंती चमान अरंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप बिंदई बिंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये कृष्ण का और रामचंद्र जी का ऐसा कोई रूप है जो ध्वंस और बाण साथ में नहीं हो, ऐसा कोई है सीता जी साथ में न हो, इसे इनका नित्य रूप है। अभी अवतार फिर लेंगे अगले ब्रह्मा जी के एक दिन में फिर लेंगे, फिर वैसा ही आएंगे, किंतु उस समय रावण रहेगा कि नहीं, वो रावण का तो उद्धार हो गया, तो फिर वही अब जय विजय रावण बन करके अब नहीं आएंगे, दूसरा कोई होगा उसका निमित्त कारण बन करके उसका वध करेंगे या और लीलाएं होंगी, किंतु राम का रूप यही रहेगा, कृष्ण का रूप यही रहेगा। हो सकता है कि उस समय कंस ना आए, कंस का उद्धार हो गया ना, पूतना नहीं आएगी, दूसरे लोग असुर होंगे या दूसरी कोई ऐसी लीला होगी जो जगत के लोगों को एकदम मुग्ध कर लेंगे, और उन लीलाओं का जो गान करेगा, उसका जो श्रवण करेगा, उसको इस जगत से मुक्ति होकर के अपनी सेवा में उनको दे देंगे। इसलिए इस चीज को समझेंगे। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, पंद्रह एक बात और कहूंगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, इसका अर्थ क्या है। लोग कह देते हैं कि ये भी सिया राम है, वो भी सिया राम है, वो भी सिया राम है, पेड़ पौधे जितने भी हैं, जड़ चेतन जो कुछ है, वो सब सिया राम है, विश्व ब्रह्मांड में सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, ऐसा मत समझो। यदि ऐसी बात है तो हनुमान जी सीताराम क्यों नहीं हो गए, उनसे बढ़कर के कोई परतत्व को जानने वाला है तो वो क्यों नहीं हो गए मुक्त होने के बाद में, मुक्त तो वही है। अरे सबसे शंकर जी और पार्वती जी उनके तत्वों को जानने वाले, कालभूषुंडी जी उनकी सब कथाओं को कहने वाले, वाल्मीकि जी से, फिर ये वाल्मीकि क्यों रह गए, ये लोग क्यों नहीं ब्रह्म बन करके राम बन गए, निराकार बन गए। ये लोगों को धोखा देने की बात है। आप हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, तुलसी का बार बार कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया के वश में भ्रमित होकर के ये जीवन है। अरे ब्रह्म को माया स्पर्श नहीं करती, इसलिए यदि हम ही सभी ब्रह्म हैं तो इस जगत में आए कैसे, दुख क्यों भोग रहे हैं, बिलबिलाते क्यों हैं, रोते क्यों हैं, मरते और फिर जन्म लेते क्यों हैं, यदि आप ही ब्रह्म हैं तो। इसलिए ऐसी भावना एकदम सर्वथा गलत है। इसी को अद्वैतवाद या मायावाद कहते हैं। ये भक्ति का विरोधी ये ज्ञान है। जिन लोगों का ऐसा विचार का उनको कदापि किसी जन्म जन्मांतर में भी भक्ति नहीं होगी, इसको गांठ बांध करके रख लेंगे। विशेष करके जो पाठक जो आते हैं ना, सप्ताह रामायण का पाठ करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, उनको कुछ अकल नहीं होती। उसमें बिरले ही कुछ तत्वों को जानने वाले परम भगवत भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, जो इन तत्वों को जानते हैं, अन्य तब ऐसे ही उल्टी सीधे बातें बतलाते हैं। क्योंकि सदगुरु की सेवा सुखी नहीं। सुखदेव वैसे, गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज जी जैसे, नारद जी जैसे लोगों से इन लोगों ने नहीं सुना, गुरु तो करण किया नहीं, ऐसे तैसे जहां से जो बात उठाई पकड़ा। इसलिए ऐसी बात नहीं, आप लोगों को ये सब बातें बतला रहा हूं इसलिए कि आप लोग भजन करेंगे। इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता कि आप हमको दो पैसा प्रणामी दे देंगे। मैं आप लोगों को देने के लिए ही भाग से आया हूं। इस चीज को समझेंगे, हमको कोई इसी का स्वार्थ ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को मैं सच्ची बात बतलाऊंगा, इसे इस रूप में समझ करके आप लोग हरि भजन करेंगे तब तो भजन होगा, नहीं तो ये सब बेकार का हो जाएगा। इसलिए आप सभी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। और गीता में भी ममई वांसो जीव लोके जीव भूषण। और यहां पर तो साफ लिखा गया है, सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोर जुग पान। इसका अर्थ क्या होगा? विशेष करके कल्याण गीता प्रेस के कल्याण ने कुछ गड़बड़ी की, क्योंकि इनका शुद्ध वैष्णव गुरु नहीं था। यह सत्य कहते हुए आप लोग कुछ मन में हमारे प्रति कुछ भावना खराब रह सकते हैं, किंतु यह समझ रखे यह परम सत्य कह रहा है। डालमिया जी थे, डालमिया नहीं, जयदयाल गोंदिका जी थे, शुद्ध वैष्णव गुरु नहीं था, इसलिए इन चीजों को समझ नहीं सके। इसलिए इन्होंने गीता प्रेस में ऐसा लिखा, उसका अर्थ भी कदर्थ कर दिया। ये इसका अर्थ देखिए, सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोर जुग पान। सिया राम का ये तात्पर्य नहीं है कि ये सब पेड़ पौधे सब सिया राम हो गए, तो मैं शब्द क्यों लगाया। ये यदि कहते हैं ये सभी सिया राम हैं तो बात तो बहुत ठीक थी, तो मान ली जाती। जैसे आपके गांव में बहुत जोर से बाढ़ आई, बाढ़ समझते हैं, फ्लड आई और पानी से चारों तरफ में भर गया, उस समय पेड़ पौधे भी जलमग्न हो गए, घर भी जलमग्न हो गए, कुछ कुछ बचे हैं, तो कहते हैं कि अरे भाई सब जगह जलमय हो गया, क्या घर भी पानी बन गया, पेड़ पौधे और ईंट और ये सीमेंट के ये खंभे पिलर जितने थे और मनुष्य जितने थे और जो दिखाई नहीं पड़ रहे सब पानी हो गए जलमय। उसी प्रकार से भगवान राम और सीता का भाव जिनके अंदर में है, उनके परम भक्त हैं, ऐसा कोई चीज पदार्थ नहीं है जहां पर कि राम और सीता जी नहीं है। इसलिए सिया राम में सब, जो भक्त लोग होते हैं सिया राम में सब को देखते हैं, सबके हृदय में सीता जी को राम को देखते हैं। यदि ये बात होती जो सिया राम ही सब लग रहे हैं, तो सिया और राम में कौन तुम हो, सिया हो कि राम हो, ये एक प्रश्न आएगा। तुम सीता जी हो कि राम हो, इसका उत्तर पहले दो, अकल चकरा जाएगी। दो तो हो नहीं सकता, यह भी बात गलत। इसलिए जिनके अंदर में प्रेम होता है राम और सीता के प्रति, वो एक कौवे के देख करके कहता, अरे ये कालभूषण जी भगवान के भक्त हैं, उनको नमस्कार। ये सियाराम का भाव है। आपको देखेंगे कहेंगे आपके अंदर में सीता जी और रामचंद्र जी हैं, इसलिए आपको नमस्कार। वो जगत में जहां उनकी दृष्टि जाती है वहीं पर सीताराम का दर्शन करते हैं, इसलिए उनके भाव को कहते हैं सियाराम। मैं सियाराम नहीं, मैं शब्द संस्कृत का एक है, ये प्रत्यय है। इसका प्रयोग होता है प्रचुर के अर्थ में, प्रचुर माने अधिक से। यहां पर सिया और राम का भाव प्रचुर मात्रा में है, उसको कहते हैं सियाराम। ये कौन कह रहा है सियाराम में सब जगह जाए, कोई भक्त कह रहे हैं, हमारे समझ से ये उमा देवी या शंकर जी कह रहे हैं, दोनों में से। तो वो यदि हैं तो वही सीताराम बन जाते, किंतु ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। कारभूषुंडी से बढ़कर के राम का तत्व जानने वाला कि वो क्यों सीताराम नहीं बन गए, वो सबको प्रणाम कर रहे हैं, राम चंद्र का समय दर्शन कर क्यों कर रहे, कृष्ण का कोई परिकार आज तक कृष्ण नहीं बना, यहां तक कि खुद शंकराचार्य पर ब्रह्म नहीं बन सके, और की तो बात क्या। इसलिए रामानुज आचार्य ने, मध्वाचार्य जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विशेष करके इन मतों का खंडन करके भक्ति की स्थापना करती है। और उसी प्रकार से हमारे तुलसीदास जी जो रामायण के लेखक हैं, लेखक नहीं प्रकाशक हैं, रामचरित तो बहुत कोटि कोटि कल्पों से है, इसको किसी ने लिखा नहीं, ये अपने आप उनके हृदय में मानस में ये प्रकट हो गई, इसलिए मानस रामचरित मानस। विशुद्ध हृदय में जब भगवान के प्रति जीव समर्पित हो जाता है तो उनके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती हैं, इसलिए इसको रामचरित मानस कहते हैं। संत तुलसीदास के मन में ये प्रकट हुई, वैसे भागवत व्यास देव के हृदय में प्रकट हुई, व्यास देव गीता भागवत के ये बनाने वाले नहीं हैं, उनके हृदय में इसकी उपलब्धि हुई। इस तरह से ये चीज रखेंगे, मैं कभी भी ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म नहीं हो जाऊंगा मुक्ति, ब्रह्म में मिलकर के एक नहीं हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ब्रह्म से कैसे मिलूंगा, जैसे हम यहां पर 100-150 आदमी हैं और एक आदमी आकर के इसमें बैठ गए, मिल गए, तो क्या वो हम में से किसी में एक में मिलकर के एक बन गए? लाख भेड़ों में एक भेड़ और मिला दो तो वो नंबर बढ़ जाएगा, आप उसको समझ नहीं सकेंगे। इसी तरह से पानी में पानी मिलाने से एक नहीं होता, कि हो जाता है, लोगों का भ्रम है, फूल ब्रिम पानी भरा हुआ है ग्लास में परिपूर्ण रूप से, और दूसरे ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ है, अब उस पानी को उसमें मिलाओ तो क्या होगा, पानी एक हो जाता तो फिर क्या होता, गिरता नहीं, इसलिए पानी बढ़ गया, एक नहीं हुआ। संसार में एक नाम की कोई चीज नहीं है, ये पहले समझिए, कोई भी एक चीज नहीं है। कैसे, ए और क मिलकर के एक हुआ, दो अक्षर हो गए ना, एक कहां हुआ, ओ एन ई वन, तृतीय त्रीन अक्षर हो गए, एक कहां रहा, यदि कहिए ऐसे एक रेखा कीजिए, ये वन हो गया एक, अरे एक में लाखों डॉट्स मिलकर के एक रेखा बनती है, एक हुआ कहां। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी ऐसे होता, एकत्व में बहुत। जैसे एक भारत में राष्ट्रपति अभी कोई है, यहां पर भी राष्ट्रपति हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, तो राष्ट्रपति कहने के लाखों प्रजाएं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, उसमें जितने बैल गाय भैंस मनुष्य लाखों करोड़ों, उसमें सर्प बिच्छू होंगे, पक्षी होंगे, कीट पतंग होंगे, उसमें नदी नाले वृक्ष सभी कुछ होंगे, ये सब मिलकर के एक बना है फिजी, भारतवर्ष बना है, और ये सब ऐसे ही राष्ट्र मिलकर के एक पृथ्वी बनी, तो एक पृथ्वी माने क्या। तो वैसे भगवान कहने से भगवान सब चीजों का मिश्रण, इसमें भगवान उनके अवतार समूह असंख्य जीव, असंख्य ये ब्रह्मांड, ब्रह्मा असंख्य, कोटि कोटि मुख वाले शंकर जी असंख्य, ये सब मिला करके एक भगवान है, इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए एक कोई चीज नहीं, और वह एक होने पर सब तो आकार हो जाएगा, यदि निराकार है तो उसको एक कैसे कहेंगे, इसलिए इन चीजों को छोड़ करके समझेंगे मैं भगवान का दास हूं, भगवान हमारे प्रभु हैं। वो आकार निराकार इसके अतिरिक्त भी और कुछ है तो सब कुछ है, सब कुछ वही है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान है, बड़े दयालु हैं, इसलिए सदरे उसको उनको प्रणाम कीजिए, उनकी कथाओं को सुनिए, उनकी लीला कथाओं को सुनिए और इस तरह से धीरे 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 भगवान की तरफ में चलिए। जरा एक कीर्तन करो तो